दानियल की पुस्तक संख्या 14, दानियल अध्याय 2, सारांश और निष्कर्ष भाग 1।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल की सभी पुस्तकें मिलती हैं और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियल की पुस्तक का पूरक मिलता है। प्रेरितों के काम 547।
वो सत्य जिसे यूहन्ना ने यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य के रूप में पहचाना है और जिसका अनावरण यहूदा के गोत्र का सिंह जुलाई 2023 से अपनी प्रजा के लिए करता आ रहा है, तब परिपूर्णता को प्राप्त होता है जब दानियल की पुस्तक को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ जोड़ा जाता है। दानियल का दूसरा अध्याय अंतिम दिनों में पशु की प्रतिमा की परीक्षा के संदर्भ में दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ये परीक्षण की एक प्रक्रिया और परीक्षण के एक विशिष्ट काल की पहचान करता है। दानियल के दूसरे अध्याय का काल और क्रम, जिसे दानियल की बंधुआई के 70 वर्षों द्वारा निरूपित किया गया है, मिलर राइट इतिहास में प्रोटेस्टेंटों के परीक्षण काल का प्रतिरूप था। प्रोटेस्टेंट अपने परीक्षण में असफल रहे और रोम की पुत्रिया बन गए। भविष्य सूचक दृष्टि से बेटी अपनी माँ का प्रतीक होती है और रोम एक भविष्य सूचक पशु है। उनकी असफलता और उसके बाद रोम की पुत्रिया बन जाना हमारे वर्तमान इतिहास में पशु की प्रतिमा के परीक्षण का प्रतिरूप है, क्योंकि वे पशु की प्रतिमा में परिवर्तित हो गए। अतः हमारे वर्तमान परीक्षण की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व दानियल की बंधुआई के 70 वर्षों द्वारा और साथ ही मिलर राइट आंदोलन के दौरान दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के इतिहास द्वारा किया जाता है।
11 सितंबर 2001 को शुरू हुए दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के इतिहास में एक विशिष्ट कालखंड और परीक्षा की प्रक्रिया है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से नबूकदनेस्सर के पशु प्रतिमा वाले स्वप्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी में एक राज्य को भी एक पशु के रूप में दिखाया गया है, नबूकदनेस्सर और कसदी धार्मिक अभिजात वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परीक्षा में असफल होते हैं, और दानियल और वे तीन वीर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परीक्षा में सफल होते हैं। ये अन्यथा प्रति हो सकता है, परंतु दानियल की पुस्तक के तीसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर की असफलता की पुष्टि होती है। परीक्षण की प्रक्रिया, जिसका वर्णन दानियल के अध्याय 1 और 2 दोनों में किया गया है, में कुछ विशिष्ट भविष्य सूचक मार्ग चिन्ह हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हाल ही में प्रस्तुत की गई सच्चाइयों के अनुरूप है। अध्याय 1 में 10 दिन उस परीक्षण काल का प्रतीक थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्गीय भोजन लेने के कारण दानियल का रूप अधिक सुंदर और अधिक पुष्ट दिखाई दिया, जबकि खोजों की दूसरी श्रेणी ने उन लोगों की छवि प्रकट की जो राजा का आहार खाते थे। भविष्यचक प्रतीकवाद में राजा एक राज्य होता है और उसी प्रतीकवाद में राजा या राज्य एक पशु भी होता है। जिनके मुखमंडल पर राजा के आहार के परिणाम झलक रहे थे, उन्होंने पशु की प्रतिमा प्रकट की। दानियल के अध्याय 2 में दानियल नबूकदनेस्सर के प्रतिमा वाले स्वप्न के छिपे हुए भेद को समझने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसे ये जानना था कि वो स्वप्न क्या था और उसका अर्थ क्या था। वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम दिनों में यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर खुलने से संबंधित भेदों को समझने की खोज में है, क्योंकि यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर खुलना वो अंतिम भविष्यद्वाणी का भेद है जो अनुग्रह काल समाप्त होने से पहले खोला जाता है। दानियल सहित सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं। उस भेद को समझने का दानियल का प्रयास जीवन मरण का मामला था, जैसे कि अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के लिए पशु की प्रतिमा की परीक्षा है।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि पशु की प्रतिमा अनुग्रह का समय समाप्त होने से पहले निर्मित की जाएगी, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनका अनंत भाग्य निर्धारित होगा। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 15:15।
जब वो भेद को समझने का प्रयास कर रहा था, तब दानियल की प्रार्थना अंत समय में परमेश्वर की प्रजा के इतिहास में एक विशिष्ट मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है। दानियल की पुस्तक 2 साक्षी प्रस्तुत करती है जो अंत समय में प्रार्थना के मार्ग चिन्ह की स्थापना करते हैं। वो मार्ग चिन्ह उस समयावधि में स्थित है जिसका प्रतिनिधित्व हर सुधार दम करेखा के दूसरे संदेश द्वारा किया जाता है। दोनों प्रार्थनाओं की भविष्यवाणी संबंधी पृष्ठभूमि बंदीवास के 70 वर्षों पर आधारित है, जो प्रतीकात्मक रूप से लैवीय व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियल अध्याय 2 की पहली आयत में नबूकदनेस्सर नाम दोहराया गया है और शास्त्र में किसी शब्द का दोहराव दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतीक है। सिस्टर व्हाइट की रचनाओं में कई संदर्भ मिलते हैं जो दानियल के तीसरे अध्याय को रविवार के कानून के प्रतीक के रूप में पहचानते हैं। दानियल अध्याय 1 में पहले स्वर्गदूत के संदेश की हर विशेषता पाई जाती है और हमें बताया गया है कि पहले और दूसरे संदेश के बिना तीसरा संदेश दानियल अध्याय 3 हो ही नहीं सकता। पशु की प्रतिमा की परिप्रशिक्षा को एलन व्हाइट ने ऐसी परीक्षा बताया है जिसे हमें परिवीक्षा समाप्त होने से पहले और हम पर मुहर लगने से पहले उत्तीर्ण करना होगा। दानियल के तीसरे अध्याय में जब संगीत बजा तो परिवीक्षा काल प्रतीकात्मक रूप से समाप्त हो गया क्योंकि तीसरा अध्याय रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है। नबूकदनेस्सर का संगीत उस धुन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सूर की वेश्या उन प्रतीकात्मक 70 वर्षों के अंत में जिनमें उसे भुला दिया गया था पृथ्वी के राजाओं के लिए गाना प्रारंभ करती है।
और उस दिन ऐसा होगा कि टायर 70 वर्षों तक एक राजा के दिनों के अनुसार भुला दी जाएगी। 70 वर्षों के अंत के बाद टायर वेश्या के समान गाएगी, वीणा उठा नगर में घूम हे भूली हुई वेश्या, मधुर राग छेड़ बहुत से गीत गा ताकि तुझे स्मरण किया जाए। और 70 वर्षों के अंत के बाद ऐसा होगा कि प्रभु टायर की सुधि लेगा और वो अपनी मजदूरी की ओर फिर जाएगी और पृथ्वी के मुख पर जगत के सब राज्यों के साथ व्यभिचार करेगी। यशाया 23:15-17।
सिस्टर व्हाइट तीन स्वर्गदूतों के संदेशों की पहचान तीन परीक्षाओं के रूप में करती है।
बहुत से जो पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के अधीन दूल्हे से मिलने के लिए निकले, उन्होंने तीसरे जो संसार को दिया जाने वाला अंतिम परखने वाला संदेश है को अस्वीकार कर दिया। और जब अंतिम पुकार की जाएगी तो इसी प्रकार का रुख अपनाया जाएगा। रिव्यू एंड हेरॉल्ड 21 अक्टूबर 1899।
कई साक्ष्यों के आधार पर दानियल का दूसरा अध्याय दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है। पहले स्वर्गदूत के सशक्तिकरण से लेकर न्याय तक का इतिहास दानियल की बंधुआई के 70 वर्षों द्वारा दर्शाया गया है। अध्याय 2 में दानियल की प्रार्थना का प्रसंग 70 वर्षों के भीतर ही घटित होता है जो 7 समय का प्रतीक है। अध्याय 9 की प्रार्थना 70 वर्षों के प्रत्यक्ष उल्लेख से आरंभ होती है। दोनों प्रार्थनाओं का भविष्यवाणी संबंधी परिप्रेक्ष्य एक समान है, वे एक ही प्रार्थना के भिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु दोनों को 7 समय के समान प्रसंग में रखा गया है और दोनों ही प्रार्थना के उस मार्ग चिन्ह के साथ मेल खाती हैं जो अंतिम दिनों के 144,000 के इतिहास में स्थित है। जब दानियल अध्याय 9 में प्रार्थना करता है वो बाबुल के राज्य से मादी और फारसियों के राज्य में एक भविष्यद्वाणात्मक संक्रमण काल में होता है। वो संक्रमण बिंदु भी एक मार्ग चिन्ह है और ये तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में उसी संक्रमण बिंदु के साथ भी मेल खाता है जब परमेश्वर के लोग लाओदिकियावासी के रूप में सड़क पर मरते हैं और फाहा फिलाडेल्फियावासी के रूप में कब्र से बाहर आते हैं। पहले स्वर्गदूत के आंदोलन का संक्रमण बिंदु दानियल के संक्रमण बिंदु और तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन इन दोनों के साथ मेल खाता है और ये तीनों ही लैव्य व्यवस्था 26 के 7 समय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मिलेराइट आंदोलन में फिलाडेल्फिया से लाओदिकियावासी के ओर संक्रमण 1856 में 7 समय पर नए प्रकाश के आगमन के साथ हुआ और उसके बाद 1863 में 7 समय का पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। दानियल अध्याय 9 में मिलेराइट काल में पहले स्वर्गदूत का आंदोलन और हमारे समय में तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन, इन सभी में एक ऐसा संक्रमण बिंदु है जो एक दूसरे के साथ मेल खाता है और ये तीनों संक्रमण बिंदु 7 समय के परिप्रेक्ष्य में स्थापित है। परीक्षण प्रक्रिया के इतिहास में दानियल उस दूत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रकाश दिया गया है, जिस प्रकाश को वो सबसे पहले अपने 3 साथियों के साथ साझा करता है और इस प्रकार वो एलिया की भविष्यद्वक्ता भूमिका का प्रतीत ठहरता है जो मरुभूमि में पुकारने वाले की आवाज है। दानियल के दूसरे अध्याय का भेद ये दर्शाता है कि बाइबल की भविष्यवाणी का आठवां राज्य सात में से है। बाइबल की भविष्यवाणी के राज्यों का पहला निरूपण होने के नाते ये प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में पाए जाने वाले राज्यों के अंतिम निरूपण से जुड़ता है। सात पूर्ववर्ती राज्यों में से होने के कारण आठवां राज्य उस संक्रमण बिंदु की ओर संकेत करता है जो आधुनिक बाबुल को अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के तीन भागी गठबंधन के रूप में स्थापित करता है। नबूकदनेस्सर का प्रतिमा स्वप्न अंततः भविष्यवाणी के इतिहास के आठवें पार्थिव राज्य की पहचान कराता है। बाइबल की भविष्यवाणियों में राज्य को पशु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए नबूकदनेस्सर के प्रतिमा स्वप्न में व्यक्त सत्य अंतिम पशु के प्रति प्रथम संदर्भ है, जिसकी पहचान प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में भी कराई गई है। इसलिए नबूकदनेस्सर के स्वप्न अंततः आठवें और अंतिम पशु की प्रतिमा का स्वप्न है। ये पशु की प्रतिमा का स्वप्न है। वो स्वयं में तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में होने वाले संक्रमण बिंदु को पहचानने के महत्व की पुष्टि है, पर राज वो कुंजी भी है जो 18 जुलाई 2020 के बाद के इतिहास के बारे में पिछले लेखों में पहचानी जा रही बातों के बड़े हिस्से को एक साथ लाती और स्थापित करती है। उन लेखों में यह प्रस्तुत किया गया है कि दानियल की 70 वर्षों की बंधुवाई द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रत्येक पवित्र सुधार आंदोलन के चार मील के पत्थर हमेशा एक ही विषय रखते हैं, मसीह के समय के वे चार मार चिन्ह मृत्यु और पुनरुत्थान के संदर्भ में स्थापित किए गए थे। पहला मार्ग चिन्ह, जो पहले संदेश के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता था, मसीह का बपतिस्मा था जो मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक था। दूसरा मार्ग चिन्ह, जो उस इतिहास में पहली निराशा का प्रतिनिधित्व करता है, लाजर की मृत्यु और पुनरुत्थान था। तीसरा मार्ग चिन्ह यरूशलेम में विजयी प्रवेश था, जो मध्यरात्रि की पुकार का प्रतिनिधित्व करता था। मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर बढ़ रहे थे और मृत्यु और पुनरुत्थान के जीवित प्रतिनिधि लाजर ने उस जुलूस का नेतृत्व किया। लाजर ये भी स्थापित करता है कि मध्यरात्रि की पुकार की घोषणा के दौरान परमेश्वर के लोग मुहरबंद किए जाते हैं।
ये सर्वोच्च चमत्कार, लाजर को जीवित करना, उसके कार्य और उसके देवत्व के दावे पर परमेश्वर की मुहर लगाने के लिए था। युगों की अभिलाषा 529
न्याय का चौथा मार्ग चिन्ह क्रूस था, जो साथ ही मृत्यु और पुनरुत्थान भी था। उन चार मार्ग चिन्हों की अवधि का प्रतिनिधित्व दानियल की 70 वर्षों की बंधुवाई करती है। मिलराइट इतिहास में मुख्य विषय दिन के बदले वर्ष का सिद्धांत था और 11 अगस्त 1840 को उस सिद्धांत की पुष्टि हुई। पहली निराशा दिन के बदले वर्ष सिद्धांत के गलत अनुप्रयोग का परिणाम थी। आधी रात की पुकार 2300 वर्षों की भविष्यवाणी और 2520 वर्षों की भविष्यवाणी के संबंध में दिन के बदले वर्ष सिद्धांत सिद्धांत की परिपूर्णता थी। और फिर 22 अक्टूबर 1844 को जब वे दिन के बदले वर्ष वाली भविष्यवाणियां पूरी हुईं, तब अन्वेषण न्याय प्रारंभ हुआ। मिलराइट इतिहास के सभी चार मार्ग चिन्हों का विषय दिन के बदले वर्ष का सिद्धांत था। उन चार मार्ग चिन्हों की अवधि का प्रतिनिधित्व दानियल की 70 वर्षों की बंधुआई करती है। राजा दाऊद के दिनों का मुख्य विषय परमेश्वर का संदूक था। जब दाऊद को सामर्थ्य मिली, तब उसने परमेश्वर के संदूक को दाऊद के नगर में लाने का निश्चय किया।
और दाऊद आगे बढ़ता गया और प्रबल होता गया, और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। 2 शमूएल 5:10।
पहली निराशा तब हुई जब उज्जा ने वाचा के संदूक को छूकर पाप किया। तीसरा मार्ग चिन्ह तब था जब दाऊद ने समझा कि प्रभु ने ओबेद एडोम गित्ती के घर को आशीष दी है, जहां उज्जा के विद्रोह के बाद से वाचा का संदूक रखा गया था। तब दाऊद यरूशलेम में अपने विजयी प्रवेश के लिए वाचा का संदूक लेने गया और उसे ले आया, परंतु उसके प्रवेश पर उसकी पत्नी ने अनुचित क्रोध और निराशा प्रकट की। उन चारों मार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व वाचा का संदूक करता है। उन चारों मार्ग चिन्हों की अवधि का प्रतिनिधित्व दानियल की 70 वर्षों की बंधुवाई करती है। 11 सितंबर 2001 को तीसरी हाय वाला इस्लाम मुक्त कर दिया गया और फिर रोक दिया गया। 18 जुलाई 2020 इस्लाम की भूमिका के बारे में एक असफल भविष्यवाणी थी। वो संदेश जो मरी हुई सूखी हड्डियों को जीवन देता है, चार पवनों से आता है जो इस्लाम का प्रतीक है और आधी रात की पुकार के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राज्य में रविवार के कानून के राष्ट्रीय धर्मत्याग के बाद आने वाला राष्ट्रीय विनाश तीसरी हाय वाले इस्लाम के द्वारा लाया जाता है। उन चार मार्ग चिन्हों की अवधि दानियल की 70 वर्षों की बंदीगिरी द्वारा दर्शाई जाती है। पहले स्वर्गदूत का आंदोलन तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है और मिलरवादी इतिहास में आधी रात की पुकार का संदेश उस असफल भविष्यवाणी का सुधार था जिसने पहली निराशा उत्पन्न की।
निराशजनों ने पवित्र शास्त्रों से समझा कि वे विलंब के समय में थे और कि उन्हें दर्शन की पूर्ति के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही साक्ष्य जिसने उन्हें 1843 में अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया था, 1844 में उनके आगमन की आशा करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। प्रारंभिक रचनाएं 497 शों।
नैशविल पर इस्लामी हमले के जो साक्ष्य है वही साक्ष्य उस हमले के भी है जो रविवार की उपासना को लागू किए जाने के प्रत्युत्तर में होगा। भविष्यवाणी की आत्मा की रचनाएं कभी असफल नहीं होती। नैशविल पर हमले की भविष्यवाणी भविष्यवाणी की आत्मा की रचनाओं में प्रस्तुत की गई है। नैशविल की भविष्यवाणी पूरी होगी, लेकिन नैशविल पर हमले की भविष्यवाणी पहले की विफल भविष्यवाणी के संशोधन पर आधारित होगी, जैसा कि मिलरवादी इतिहास में था। ये चौथे मील के पत्थर पर पूरी होती है जो न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु हमेशा शुरुआत के साथ अंत को दर्शाते हैं और 11 सितंबर 2001 का पहला मार्ग चिन्ह एक इस्लामी हमला था। अतः रविवार के कानून के न्याय के समय नैशविल पर एक इस्लामी हमला होगा। इसमें अन्य लक्ष्य भी शामिल हो सकते हैं, परंतु आधी रात की पुकार का संदेश उस संदेश का सुधार है जिसने पहली निराशा उत्पन्न की थी। पहली निराशा का कारण भविष्यवाणी पर समय तत्व लागू करने का पाप था, न कि एले वाइट के शब्द। ये मानना महत्वपूर्ण है कि वे चार मार्ग चिन्ह जो पहले संदेश के सशक्तिकरण से प्रारंभ होते हैं, जो दानियेल में प्रतीकात्मक 70 वर्षों की शुरुआत में घटित होता है, सदैव उसी विषय द्वारा संचालित होते हैं। यदि आपने 11 सितंबर 2001 को भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में स्वीकार किया है, तो आपने भविष्य सूचक रूप से छिपी हुई पुस्तक खाई है। वास्तव में बहुत कम लोगों ने उस सत्य को खाया, परंतु कुछ थे, जैसा कि दानियेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वे बाबुल के भोजन से अपवित्र न हो। फिर भी ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि 11 सितंबर 2001 भविष्यवाणी की पूर्ति था, पर तर्क देते हैं कि वो इस्लाम नहीं था, बल्कि बुश परिवार या वैश्विकतावादी या जेसुइट या CIA या इन सामान्य पात्रों का कोई संयोजन था, जिन्हें आधुनिक साजिश सिद्धांतकार अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अल्फा और ओमेगा के रूप में यीशु आरंभ से अंत को चित्रित करते हैं। अतः यदि हम 11 सितंबर 2001 को जो भविष्यवाणी के रूप में दर्शाया गया था उसके विषय में गलत है, तो हम सत्य के भविष्य सूचक वचन को ठीक से विभाजित करने की अपनी क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। मिलराइट इतिहास में प्रथम संदेश का सशक्तिकरण दूसरी हाय के इस्लाम द्वारा हुआ था और वो सशक्तिकरण 11 सितंबर 2001 को हुए उस सशक्तिकरण का प्रतिरूप था जो तीसरी हाय के इस्लाम द्वारा लाया गया था। पहले मार्ग चिन्ह पर मौजूद इस्लाम अंतिम मार्ग चिन्ह पर के इस्लाम की पहचान कराता है। अंतिम मार्ग चिन्ह न्याय का प्रतीक है और संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय रविवार के कानून के समय होता है। ये यहेजकेल के 37वें अध्याय का दूसरा संदेश है जो मरे हुए को जीवन देता है, और वही संदेश तीसरे मार्ग चिन्ह का संदेश है जो आधी रात की पुकार है। ये मुहरबंदी का संदेश है जिसे मसीह के गधे पर सवार होकर किए गए विजयी प्रवेश द्वारा प्रतीकित किया गया है। गधा इस्लाम का प्रतीक है। आधी रात की पुकार का ये मुहरबंदी वाला संदेश इस्लाम द्वारा वहन किया जाता है।
सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, नम्र और गधे पर बैठा हुआ और एक बछेड़े पर जो गधे का बच्चा है। मत्ती 21:5।
यहेजकेल की दूसरी भविष्यवाणी चार हवाओं से आती है जो इस्लाम का भी एक प्रतीक है। इस सत्य के बारे में स्पष्ट होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि आधी रात की पुकार वाला संदेश वही संदेश है जो तीसरे हाय के इस्लाम की पहचान करता है। उस शक्ति के रूप में जो रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्याय लाती है और उस फरमान के बाद आने वाला राष्ट्रीय विनाश उत्पन्न करती है। प्रकाशित वाक्य की सात तुरहिया मूर्तिपू रोम और पापाई रोम दोनों द्वारा रविवार की आराधना को बलपूर्वक लागू करने के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय थी। पहली चार तुरहिया मूर्ति पूजक रोम पर उस समय लाई गईं जब कॉन्स्टेंटाइन ने सन 321 में पहला रविवार विधान लागू किया। पांचवी और छठी तुरहिया जो इस्लाम की पहली और दूसरी हाई भी हैं, सन 5 से 3 में ओर्लियों की परिषद में लागू किए गए पोपीय रविवार विधि के कारण पोपीय रोम के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय थे। सातवीं तुरही जो इस्लाम की तीसरी हाई है वो न्याय है जो निकट भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका पर तब लाया जाएगा जब वो रविवार की आराधना को लागू करेगा। तीसरी विपत्ति का इस्लाम 11 सितंबर 2001 के पहले मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। 18 जुलाई 2020 को नैशविल पर इस्लामी हमले की असफल भविष्यवाणी पहली निराशा दूसरा मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करती है। अध्याय 37 में यहेजकेल की दूसरी भविष्यवाणी में दर्शाए गए अनुसार इस्लाम के चार पवनों का संदेश मध्य रात्रि की पुकार तीसरा मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है और फिर रविवार के कानून पर 18 जुलाई 2020 की असफल भविष्यवाणी की पूर्ति का चौथा मील का पत्थर। ये वे चार भविष्य सूचक मील के पत्थर हैं जो 1,44,000 के भविष्यवाणी के इतिहास में घटित होते हैं जैसा कि दानियेल की 70 वर्षों की बंधुआई द्वारा दर्शाया गया है। आधी रात की पुकार के संदेश की पहचान उस भेद का एक प्रमुख तत्व है जो प्रतीक रूप में दानियेल को प्रकट किया गया था जब उसने नबूकदनेस्सर के प्रतिमा स्वप्न को समझने के लिए प्रार्थना की थी। उसकी प्रार्थना एक मार्ग चिन्ह है जो प्रकाशित वाक्य 11 के दो साक्षियों के 3.5 दिन तक चली मृत्यु अवधि के अंत में स्थित है। दानियेल की लैव व्यवस्था 26 की प्रार्थना जैसा कि अध्याय 9 में लिपिबद्ध है दारा के प्रथम वर्ष में हुई थी। ये उसकी प्रार्थनाओं को परिवर्तन बिंदुओं पर स्थान देता है। मिलराइट इतिहास में संक्रमण बिंदु 1886 था जब जेम्स और एलन व्हाइट के अनुसार मिलराइट आंदोलन फिलाडेल्फिया से लाओदिकिया में संक्रमण हुआ। उसी वर्ष हायरम एडसन के रिव्यू एंड हेरल्ड के लेखों में सात काल पर नया प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन 1837 सात काल बाद सात काल को पूरी तरह अस्विश्वाह कर दिया गया। दानियेल ने वह प्रार्थना की जिसे बाइबल की भविष्यवाणी के प्रथम और द्वितीय राज्यों के बीच के संक्रमण बिंदु पर सात काल के बिखराव के लिए उपाय के रूप में पहचाना जाता है। 1260 वर्षों का प्रतीक है जो अपने आप में सात समय का प्रतीक है। 18 जुलाई 2020 को फ्यूचर फॉर अमेरिका के लाओदिकियाई आंदोलन ने परमेश्वर की उस आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह किया कि भविष्य सूचक संदेश को फिर कभी समय पर न टांगा जाए। तब वो आंदोलन प्रकाशित वाक्य 11 की सड़क जे में मारा गया और तितर बितर कर दिया गया जो यहेजकेल की मृत सूखी हड्डियों की घाटी से होकर गुजरती है। उस तितर बितर के समय के अंत में जो कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत का विलंब का समय भी है, अब उन्हें उनकी कब्रों से एक पुकारने वाली आवाज द्वारा 3.5 दिनों की मरुभूमि के भीतर से बाहर बुलाया जा रहा है। जैसे मिलराइट्स ने अंततः ये पहचाना कि वे उस समय मत्ती अध्याय 25 और हबकूक अध्याय 2 के प्रतीक्षा के समय में थे, वैसे ही दो मरे हुए साक्षियों के लिए ये आवश्यक है कि जब जंगल में पुकारने वाली आवाज पुकारे तो वे पहचाने कि वे कहाँ हैं। उन्हें ये पहचानना होगा कि वे बिखरे हुए हैं। वो पहचान प्रार्थना के लिए बुलाहट है, पर केवल प्रार्थना नहीं, वो दानियेल की लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना के लिए बुलाहट है। उस विशिष्ट प्रार्थना के बिना कोई जागृति नहीं होती। वो जागृति लाओदिकिया से फिलाडेल्फिया की ओर संक्रमण बिंदु को चिन्हित करती है और 7 में से 8 वाली भविष्य सूचक परिघटना उत्पन्न करती है जैसा कि दानियेल अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर की मूर्ति द्वारा पुष्ट होता है। जब वो पश्चाताप और अंगीकार की प्रार्थना पूरी हो जाती है तो प्रतिज्ञा ये है कि परमेश्वर तब अपनी वाचा को स्मरण करेगा और अपनी तितर बितर की हुई प्रजा को इकट्ठा करेगा। येजकेल की पहली भविष्यवाणी ने हड्डियों को इकट्ठा कर दिया और फिर उसकी चारों वायुओं की भविष्यवाणी ने नवजन्मे फिलाडेल्फियाई को एक पराक्रमी सेना में रूपांतरित कर दिया। एक पराक्रमी सेना जो प्रकाशित वाक्य 11 के तनार फिर स्वर्गदूतों के एक बादल के साथ स्वर्ग में उठा ली जाने वाली थी। तब वे प्रभु का ध्वज होते हैं। दानियल अध्याय 2 का भेद, जिसे यहूदा के गोत्र का सिंह प्रकट कर रहा है, 7 में से 8वें की परिघटना की पुष्टि करता है और दानियल अध्याय 2 के अन्य सभी भविष्य सूचक तत्व प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के 2 गवाहों के भविष्य सूचक क्रम के साथ मेल खाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के 2 गवाह उसी घड़ी में ध्वज के रूप में ऊंचे उठाए जाते हैं जब रविवार का कानून लागू होता है, क्योंकि वे प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महान भूकंप के समय ऊंचे उठाए जाते हैं। महान भूकंप नगर का 10वां भाग नष्ट कर देता है और संयुक्त राज्य अमेरिका 10 राजाओं में प्रधान राजा है, जैसे फ्रांस था जब फ्रांसीसी क्रांति के भूकंप ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की पूर्ति में फ्रांस को नष्ट कर दिया था। उस भूकंप की पूर्ण पूर्ति पृथ्वी के पशु पर संपन्न होती है और पृथ्वी के पशु के राज्य में रविवार का कानून एक हिलाहट उत्पन्न करता है। प्रकाशित वाक्य 11 के भूकंप की पूर्ण पूर्ति वही रविवार का कानून है जब पृथ्वी का पशु हिलाया जाए तो आया और राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है। उसी घड़ी 2 गवाह एक ध्वज के समान ऊपर उठाए जाते हैं। वे बादलों में स्वर्ग पर चढ़ जाते हैं, ठीक जैसे मसीह अंतिम बार स्वर्ग में आरोहित हुए थे। उनके अंतिम वचन जो उन शिष्यों से कहे गए थे जो अंतिम दिनों के परमेश्वर के लोगों का प्रतिरूप है और जिन्हें भी एक ध्वज के समान स्वर्ग में उठाया जाना है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में दर्ज है।
और उसने उनसे कहा, तुम्हारे लिए उन समयों और कालों को जानना नहीं है जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति पाओगे और तुम यरूशलेम में, समस्त यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। और ये बातें कहकर जब वे देख रहे थे, वो ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। प्रेरितों के काम 1-9।
जो लोग पताका की भूमिका निभाना चाहते हैं, उन्हें समय और काल के निर्धारण से मुंह मोड़ना होगा यदि वे पताका का कार्य पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। दानियल को अध्याय 2 में जो रहस्य प्रकट किया गया वो यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का वो रहस्य है जो अनुग्रह काल समाप्त होने से ठीक पहले अनमुद्रित किया जाता है। वो रहस्य 7 गर्जनाओं के छिपे हुए इतिहास को सम्मिलित करता है। उस इतिहास की संरचना उस हिब्रानी शब्द पर आधारित है जो हिब्रानी वर्णमाला के प्रथम, 13वें और अंतिम अक्षर को एक साथ लाकर बनाया गया था। जब वे अक्षर एक साथ लाए जाते हैं तो वे हिब्रानी शब्द सत्य बनाते हैं। यीशु सत्य है जो पहला और अंतिम भी है। वे 3 अक्षर हर महान सुधार आंदोलन की संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 3 चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे दानियल ने 12वें अध्याय टाक में शुद्ध किए गए, श्वेत किए गए और परखे गए के रूप में प्रस्तुत किया है। उस 3 चरणीय परीक्षा और शुद्धिकरण प्रक्रिया को पिछले 2 से अधिक दशकों से फ्यूचर फॉर अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है, परंतु अब इसे पवित्र सुधार रेखाओं के भीतर एक छिपे हुए इतिहास के रूप में पहचाना गया है। वो छिपा हुआ इतिहास 7 गर्जनाओं की पूर्ण पूर्ति है जो अब तक अनुग्रह काल के समाप्त होने से ठीक पहले तक मुहर बंद रही थी। लंबे समय से यह समझा गया है कि 7 गर्जनाएं पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के अधीन घटित घटनाओं का एक विवरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये भी कि वे भविष्य की वे घटनाएं जो अपने क्रम में प्रकट की जाएंगी का भी प्रतिनिधित्व करती है। अब सत्य के प्रकटीकरण के द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि सुधार की रेखा के अंतिम 3 मार्ग चिन्ह 7 गर्जनाओं का गुप्त इतिहास है। वे मार्ग चिन्ह पहली निराशा से शुरू होते हैं और अंतिम निराशा पर समाप्त होते हैं। मध्य मार्ग चिन्ह मध्य रात्रि की पुकार है। पहली निराशा विलंब का समय की शुरुआत को चिन्हित करती है जो मध्य रात्रि की पुकार पर समाप्त होता है। मध्य रात्रि की पुकार का संदेश न्याय पर समाप्त होता है, जहां अंतिम निराशा चिह्नित होती है। दानियल अध्याय 2 में पहली निराशा ये थी कि दानियल ने यह पहचाना कि उसे मृत्यु के फरमान के अधीन कर दिया गया है, तब उसने समय मांगा और इस प्रकार विलंब के काल की शुरुआत चिन्हित हुई। इससे उसे उस भेद की समझ मिली जो आधी रात की पुकार का संदेश है, जिसे फिर नबुकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया गया ताकि वो दानियल के संदेश का परख कर सके। दानियल द्वारा प्रस्तुत स्वप्न और उसकी व्याख्या के बारे में नबुकदनेस्सर का निर्णय उन तीन मार्ग चिन्हों में से तीसरे को चिह्नित करता है, जो सात गर्जनाओं के छिपे हुए इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी निर्णय का वर्णन दानियल के तीसरे अध्याय में भी मिलता है, जो उस सिद्धांत को दर्शाता है जो दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में दृढ़तापूर्वक अपनाया गया है, और वो सिद्धांत है दोहराना और विस्तार। अगले लेख में हम अध्याय 300 पर चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ ये बताना उचित है कि अध्याय 3 में तीसरे मार्ग चिन्ह का न्याय उस अंतिम निराशा की पहचान कराता है, जिसका प्रतिरूप पहली निराशा ने प्रस्तुत किया था। सात गर्जनाओं का छिपा हुआ इतिहास तीन मार्ग चिन्हों की पहचान करता है, जो एक निराशा से आरंभ होकर एक निराशा पर समाप्त होते हैं। दानियल के अध्याय 2 में पहली निराशा नबुकदनेस्सर द्वारा दिए गए मृत्यु के फरमान से जुड़ी है, और अध्याय 3 में अंतिम निराशा नबुकदनेस्सर के एक और मृत्यु के फरमान से जुड़ी है। दो गवाह का छिपा हुआ इतिहास, जो फ्यूचर फॉर अमेरिका आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, 18 जुलाई 2020 की निराशा को दर्शाता है। तब ठहरने का समय शुरू हुआ, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में 3.5 दिन से दर्शाया गया है। अतल कुंड से ऊपर आने वाले पशु द्वारा सड़कों पर मारे गए लोगों के जागरण और पुनरुत्थान का वर्णन परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन में विशेष रूप से किया गया है। पर सरल स्तर पर जब वे दो गवाह जागते हैं, तो वे दानियल अध्याय 2 में दर्शाए गए भेद को समझते हैं। वो राज मध्य रात्रि की पुकार का संदेश है, जिसे वे फिर दानियल अध्याय 3 तक प्रचारित करते हैं, जब शीघ्र आने वाला रविवार का कानून आ पहुंचता है और अंतिम निराशा घटित होती है। पहली निराशा 18 जुलाई 2020 को उन लोगों ने अनुभव की जो दानियल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे। अंतिम निराशा 10 राजाओं के नेता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, द्वारा अनुभव की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय धर्म त्याग इस्लाम से राष्ट्रीय विनाश लेकर आता है। हम अगले लेख में दानियल के दूसरे अध्याय के सारांश और निष्कर्ष को पूरा करेंगे।
शैतान ने संसार को बंदी बना लिया है। उसने एक मूर्तिपूजक सप्त प्रवर्तित किया है और उसे जाहिर तौर पर बड़ा महत्व दिया है। इस मूर्तिपूजक सप्त के लिए उसने प्रभु के सप्त से मसीही संसार की आराधना छीन ली है। संसार एक परंपरा, मनुष्यों द्वारा बनाई गई आज्ञा के आगे झुकता है, जैसे नबूकदनेस्सर ने दूरा के मैदान में अपनी सोने की मूर्ति खड़ी की और इस प्रकार अपने आप को ऊंचा ठहराया, वैसे ही शैतान इस झूठे सप्त में अपने आप को ऊंचा उठाता है, जिसके लिए उसने स्वर्गीय परिधान चुरा लिया है। रिव्यू एंड हैरल्ड, मार्च 8, 1898।